समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। निराशा हमें मिट्टी के समान बना देती है। इस जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जिस पर आपको गर्व हो। निराश होकर मत बैठिए और मनुष्य जीवन को व्यर्थ न जाने दीजिए। ईश्वर ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, ये प्रकृति, ये संवेदनाएं, असीम और अपरिमित संभावनाएं। बस मन से कोशिश करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, सारी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। इसी ऊर्जा के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
हेलो आकर्षिता, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल यू लवली फोक्स ट्यून इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। As always, we have lots to share with you, friends, so stay tuned and enjoy the program. And Akarshita, let's begin with some news headlines now.
जी, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने के संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों और परिचर्चाओं तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक विचार विमर्श और गहन विश्लेषण किया गया। इसके अलावा जन जागरूकता के लिए विभिन्न संवाद कार्यक्रमों, वेबसाइट और मंत्री स्तरीय वेबिनार भी आयोजित किए गए। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में इस बारे में जानकारी शामिल करने के प्रयास भी किए गए। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। ब्यूरो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में आवश्यक तकनीकी सहयोग भी दे रहा है।
Prime Minister Narendra Modi yesterday expressed gratitude to the people for reiterating their faith in the constitution and the democratic systems of the country, addressing the nation in his first Mann Ki Baat program after the general elections on Akashvani. The Prime Minister highlighted that the 2024 Lok Sabha elections were the biggest in the world in which 65 crore people cast their votes. Mr. Modi spoke about the special campaign launched on World Environment Day this year, Ek Ped Ma Ke Naam. He appealed to people to plant a tree along with their mothers or in their mother's name. Touching upon the subject of yoga, the Prime Minister said that the whole world celebrated the 10th International Day of Yoga with enthusiasm.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल्थानी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री अल्थानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने कहा कि वे भारत कतर संबंधों को और आगे बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के लिए आश्वस्त हैं।
India has initiated an anti-dumping probe pertaining to glass fiber imports from China, Thailand and Bahrain following a complaint from a domestic player. If confirmed, anti-dumping duties can be imposed. Directorate General of Trade Remedies initiated the anti-dumping investigation based on the evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product. The DGTR is the Commerce Ministry's investigation arm and can recommend imposing anti-dumping duties on the imports. However, the final decision is taken by the Finance Ministry. Anti-dumping probes are conducted to find out if domestic industries have been hurt because of a large surge in cheap imports. These duties are imposed under the multilateral regime of the World Trade Organization. The duty is for ensuring fair trading practices and creating a level playing field for domestic producers.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने शनिवार रात किंगस्टन ओवल में भारत की ऐतिहासिक विजय के बाद ये घोषणा की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान असाधारण प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई दी।
India has joined UN-led conference on Afghanistan, which began in Doha yesterday. India is being represented by Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, J.P. Singh. India is among the 25 countries participating in the third UN-led conference on Afghanistan, looking to find ways to improve the lives of the Afghan people in the Taliban-ruled country. The meeting is significant as it is the first time that the Taliban are attending the talks. However, the UN has denied that the latest round of talks in Doha are meant to pave the way for international recognition for the Taliban. The conference in Doha is also seeing participation by the EU, OIC and SEO. India has legitimate economic and security interests in Afghanistan. New Delhi is of the view that the international community must focus on combating terrorism, humanitarian assistance, formation of a truly inclusive government and preserving the rights of women, girls and minorities.
महिला टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका आज सुबह चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। कल का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 232 रन था। वे अभी भी 105 रन से पीछे हैं।
एनसीआरबी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। This app is a compilation of new criminal laws, namely Bharatiya Nyay Samhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and Bharatiya Saksha Adhiniyam. It is available on Google Play Store as well as Apple App Store. This app is useful for general public, court officers, advocates, law students as well as for police officers in enhancing their knowledge about the new criminal laws. This app serves as a comprehensive guide, providing complete information about the new criminal laws at one place. It provides an index linking all chapters and sections of the new laws and a corresponding chart for section-wise comparison between old and new laws with a search and linking facility for quick information retrieval. The app is designed to work in offline mode also, in absence of connectivity. With its user-friendly design, comprehensive content and innovative features, the app empowers users to learn the new laws effectively.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें, आइए जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरें सुभद्रा से।
Thank you, Akashita. Taking you down south for some news, the Tamil Nadu Science Forum is organizing a free science lecture on genetics and laws of inheritance on July the 6th at Anna Centenary Library. The topic will be on gene, genome, genomics and the society. The event will delve into the evolution of genetics and its societal impacts. Professor S. Revati Devi, who has done research in genetics and genomics, will highlight advancements from Mendel's laws to modern genome editing. Bengaluru News Now. Bengaluru reported its first confirmed dengue-related death since January amid a recent spike in cases, according to a senior official. The 27-year-old victim, who was from C.V. Raman Nagar, succumbed to the vector-borne disease. On Friday, 2 suspected dengue deaths were reported in the city. The civic body decided to conduct a death audit today to confirm the cause of death. Of the 2 suspected cases, 1 has been confirmed, marking the first dengue death in Bengaluru since January. From January to date, the city had recorded 1,743 cases of dengue. Getting to Hyderabad now. Prime Minister Narendra Modi has released three books on the life and journey of former Vice President of India Venkaiah Naidu yesterday at a ceremony. They include a biography, a photo chronicle and a pictorial biography have been released by the Prime Minister on the eve of Naidu's 75th birthday via a video conference. The books are titled Venkaiah Naidu, Life in Service, Celebrating Bharat, The Mission and Message of Sri M. Venkaiah Naidu as the 13th Vice President of India, and a photo chronicle and a pictorial biography in Telugu titled Mahaneta, Life and Journey of Sri M. Venkaiah Naidu. Addressing the ceremony online, Mr. Modi said, these books will inspire the readers and will guide them towards the path of national services. And Akarshita, what about other news?
Aur aaiye ab jante hain Delhi, Mumbai aur Kolkata ki khabrein. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने बताया है कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार कार्य अपनी नियमित समय से चल रहा है और 2026 के अपने लक्ष्य तक सेवा शुरू कर देगा। डीएमआरसी ने बताया है कि वर्तमान में चौथे चरण के अंतर्गत तीनों कॉरिडोर पर 50% से अधिक प्रगति हो चुकी है। इसके अलावा मजलिस पार्क मौजपुर खंड पर लगभग 80% सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहीं गोल्डन लाइन के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम मार्ग कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों पर सुरंग बनाने का काम चालू है। डीएमआरसी ने बताया कि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में पेड़ काटने और भूमि अधिग्रहण के लिए कुछ अनुमतियां अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा मेट्रो अधिकारी नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर स्थल निरीक्षण भी करते रहते हैं। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय ने कल जल भराव की समस्या को लेकर सदर बाजार विधानसभा के किशनगंज इलाके में एमसीडी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ मालवीय नगर, कृष्णनगर, सफदरजंग एनक्लेव और एसएफएस अपार्टमेंट क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। सोशल मीडिया के माध्यम से महापौर ओबेरॉय ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नियमित प्रयासों से स्थिति नियंत्रित है। उन्होंने नगर निगम के अफसरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत तेजी से काम करके इन क्षेत्रों की समस्याओं का निवारण किया और जनता को राहत दिलाई। पुलिस कमिश्नरेट दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस आज राजधानी के किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन कर रही है। इस परेड में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित आमंत्रित लोग शामिल होंगे, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। परेड सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी और इसका सीधा प्रसारण दिल्ली पुलिस के यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने पंढरपुर जाने वाले सभी वारकरियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना की। कल पुणे में वारकरियों के लिए स्वास्थ्य अभियान के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने पंढरपुर जाने वाले सभी वारकरियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना की। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी बन गई हैं। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सैनिक ने निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर से कार्यभार संभाला। सुजाता सैनिक के पास स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और जिला, राज्य और संघीय स्तर पर शांति स्थापना में और भारतीय प्रशासनिक सेवा और संयुक्त राष्ट्र के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सार्वजनिक नीति और शासन का 3 दशकों का अनुभव है। मुंबई के जल संकट का वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए बृहन मुंबई नगर निगम ने पालघर के गरगई पिंजल में बांध बनाने की योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट नामक पोर्टल का उद्घाटन किया और 2 पुस्तकें एनिमल डिस्कवरीज 2023 और प्लांट डिस्कवरीज 2023 प्रकाशित की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और विभिन्न अन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और विभिन्न दस्तावेज प्रकाशित किए गए। मंत्री ने पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया जो 3 जुलाई तक चलेगा। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल होंगे। और आइए अब जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने और बिजली चमकने के साथ बारिश की छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees Celsius. Maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius. The maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius. And Akashita, now let's move on to some history, some events that happened this day. So starting with 1796, the first experiment with smallpox inoculation was made by Dr. Edward Jenner of Berkeley, England. 1852, for the first time in Asia, postal stamp for the general public was issued by Sindh province in Karachi. And in 1862 this day, Calcutta High Court was established for West Bengal and Andaman and Nicobar Islands. The court had a circuit bench at Port Blair. And also in India, the first postcards were issued on this day in 1879. Their designing and printing was done by Messrs. Thomas de la Rue and Company, London. And 1947 this day, Independence of India Bill passed. British Parliament passed Act and fixed August 15th. The date for the transfer of power. And 1955, Imperial Bank of India was inaugurated and was renamed as State Bank of India.
और 1960 में घाना अफ्रीका का एक प्रजातंत्र राज्य है जिसे 1 जुलाई को गणराज्य घोषित किया गया।
1964 this day, Industrial Development Bank of India, IDBI, was established. And 1968 this day, the United States, the United Kingdom, USSR and 59 other states signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty in an attempt to halt the spread of nuclear weapons. It became effective on 5th of March 1970.
और 1996 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में स्वेच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार लागू। वहीं 2003 में समुद्र में सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता। 2006 में अमरीकी संसद की समितियों ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को मंजूरी प्रदान की। वहीं 2008 में गाजापट्टी के फलस्तीनी विद्रोहियों ने दक्षिणी इसराइल पर रॉकेट दागा। वहीं 2017 में भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया।
एंड फ्रेंड्स, टुडे इज अ वेरी इम्पोर्टेंट डे इन हिस्ट्री, अ डे टू सेलिब्रेट एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दोज ग्रेट मेन एंड वेमेन हु आर कॉल्ड, व्हाट आर दे कॉल्ड, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स। यस फ्रेंड्स, डॉक्टर्स आर हियर टू स्टे एंड टुडे इज अ स्पेशल डे डेडिकेटेड टू डॉक्टर्स to honor their devotion, hard work and commitment to preserving the health and welfare of the country. Why and when this day was started? You know, friends, it's pretty interesting to know that the nationwide celebration of Doctors' Day in India was inspired by a single individual, a single man. One of the most renowned and well-respected physicians in India went by the name of Dr. Bidhan Chandra Roy. Of course, he was a skilled senior doctor, freedom fighter, politician and a renowned social worker.
जी सुभद्रा, वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक वरिष्ठ चिकित्सक, विद्वान, शिक्षाविद, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध समाज सेवक के साथ साथ आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में भी बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ उनका स्मरण किया जाता है। विशेषकर बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के संदर्भ में उन्हें बंगाल का मसीहा भी कहा जाता है। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो डॉ राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने पर विचार हुआ, किंतु उन्होंने अपनी डॉक्टरी और समाज सेवा कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट इनकार कर दिया। तब गांधी जी के कहने पर उन्हें एक कांग्रेसी होने के नाते अपने कर्तव्य के रूप में बंगाल के मुख्यमंत्री पद का दायित्व ग्रहण करना पड़ा। 23 जनवरी 1948 में राज्यपाल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। डॉ राय ने अपने जीवन काल में अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य किया। आज भी उनके द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थापित संस्थान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे सही मायनों में राष्ट्र निर्माता थे। जादवपुर टीबी अस्पताल, चितर रंजन सेवा सदन, आरजी खार मेडिकल कॉलेज, कमला नेहरू अस्पताल, विक्टोरिया संस्थान और चितरंजन कैंसर अस्पताल आदि उनके द्वारा खुलवाए गए हैं। उन्होंने अपने निवास स्थल को भी अपनी माता के नाम पर अस्पताल चलाने के लिए दान में दे दिया।
सो आकर्षिता, एवरी ईयर ऑन जुलाई 1st मिलियंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑनर्ड एज वी सेलिब्रेट दिस अमेजिंग मैन्स लाइफ एंड अकम्प्लिशमेंट्स। एंड फ्रेंड्स, टुडे इज ऑल्सो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। जुलाई 1st कमेमोरेट्स द फाउंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सेलिब्रेटिंग इट्स 76th ईयर, ICAI होल्ड्स द प्रेस्टिजियस पोजिशन एज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑफकोर्स द डे होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द अकाउंटिंग कम्युनिटी एज it recognizes the contributions and achievements of CAs in the fields of finance and business. So a happy Chartered Accountants Day to all CAs out there. Here's to another year of excellence.
जी, और अब बात करते हैं उन महान लोगों की जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या जन्मदिन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन से। आज आधुनिक भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में से एक पुरुषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि है। वे राष्ट्रीय नाम से भी विख्यात थे। उन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में प्रारंभ किया। पुरुषोत्तम जी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के प्रबल समर्थक थे और इसको आगे बढ़ाने और राष्ट्रभाषा का स्थान देने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने 10 अक्टूबर 1910 को नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। इसी क्रम में 1918 में उन्होंने हिंदी विद्यापीठ और 1947 में हिंदी रक्षक दल की स्थापना की। वे हिंदी को देश की आजादी के पहले आजादी प्राप्त करने का और आजादी के बाद आजादी को बनाए रखने का एक बड़ा साधन मानते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। वे हिंदी में भारत की मिट्टी की सुगंध महसूस करते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में स्पष्ट घोषणा की गई थी कि अब से राजकीय सभाओं, कांग्रेस की प्रांतीय सभाओं और अन्य सम्मेलनों में अंग्रेजी का एक शब्द भी सुनाई ना पड़े। पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। वर्ष 1961 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
2004 this day, iconic American motion picture stage actor Marlon Brando, the most celebrated of the method actors, passed away at the age of 80. Princess of Wales Diana was born this day in 1961. Of course, she was called the People's Princess for the way she lived, charitable, kind, humble and compassionate. Unfortunately, friends, her life was cut short due to an automobile accident on 31st August 1997 when Diana was just 36 years old. A brilliant soul and pop singer whose legacy in American music is immeasurable and is felt even now. We are talking about Luther Vandross, who passed away this day in 2005 at the age of 54. His musical compositions influenced Broadway, R&B and jazz-oriented romantic songs. He had earned several Grammys in his lifetime, but one Grammy he got for this particular song that reached him after his demise, a touching tribute to his father, Dance With My Father.
My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could.
आज भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जन्मदिन है। भारतीय बांसुरी वादन कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की भूमिका प्रशंसनीय है। हरि प्रसाद चौरसिया का बचपन गंगा किनारे बनारस में बीता। उनकी शुरुआती शिक्षा में तबला वादक के रूप में हुई। अपने पड़ोसी पंडित राजा राम से उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी। इसके बाद बांसुरी सीखने के लिए वे वाराणसी के पंडित भोलानाथ प्रसाना के पास गए। संगीत सीखने के बाद उन्होंने काफी समय ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम किया। संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने की खोज में उन्हें बाबा अलाउद्दीन खां की सुयोग्य पुत्री और शिष्या अन्नपूर्णा देवी की शरण में ले गई। अन्नपूर्णा देवी की शागिर्दी में उनकी प्रतिभा में और निखार आया और उनके संगीत को जादुई स्पर्श मिला। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी के जरिए शास्त्रीय संगीत को तो लोकप्रिय बनाने का काम किया ही, संतूर वादक पंडित शिव शंकर शर्मा के साथ मिलकर शिव हरि नाम से कुछ हिंदी फिल्मों में मधुर संगीत भी दिया। इस जोड़ी की फिल्में हैं चांदनी डर, लम्हे, सिलसिला, फासले, विजय और साहिबान। पंडित चौरसिया ने एक तेलुगु फिल्म सिरी वेनेला में भी संगीत दिया, जिसमें नायक की भूमिका उनके जीवन से प्रेरित थी। इस फिल्म में नायक की भूमिका सर्वदमन बनर्जी ने निभाई थी और बांसुरी वादन उन्होंने ही किया था। इसके अलावा पंडित जी ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकारों सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन की कुछ फिल्मों में बांसुरी वादन किया। उन्हें पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका ये संगीत।
After that beautiful tune set to Hamsadhwani Rag, we go over to a birth anniversary of Kentucky-born country singer Keith Whitley, who in the 1980s helped in bringing back the traditional country music at a time when pop and rock-inflected songs and styles dominated the genre. A musical prodigy, he loved to sing from a young age and began performing publicly at 4 years. He was just 4 years old then. Learned the guitar, went on to debut on both radio and television, and formed his own band all before he turned 14. Sadly, he died young, also at the age of 34. Today, July 1 marks his birth anniversary. He has that huge smash, "When You Say Nothing at All," Keith Whitley.
Without saying a word, you can light up the dark. As I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you...
Ustad Rashid Khan took birth this day. His voice and rendition were an integration of the best values of the past masters of his gharana. He was a great-grandson of Rampur Saiswan Gharana founder Inayat Hussain Khan. It is sad to note that friend he left us very soon at the age of 55. He was undisputedly the defining artist of his generation, someone who enjoyed a kind of commercial success and public adulation that was rare for a classical singer of his era.
Satrangi Mure Anganama Padaro Satrangi Mure Anganama Padaro.
भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक अमरकांत की आज जयंती है। वे हिंदी तथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद अमरकांत ने निश्चय कर लिया था कि उन्हें हिंदी साहित्य की सेवा करनी है। मन में पत्रकार बनने की इच्छा थी और उन्होंने आगरा शहर से निकलने वाले दैनिक पत्र सैनिक से अपनी नौकरी की शुरूआत की। अमरकांत सदैव ही संकुचित व्यक्ति रहे। आम जनता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें साधारण नहीं लगती थी। देश में होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना पर उनकी बारीक नजर रहती थी। वे खुद भी ये पसंद नहीं करते थे कि वे चर्चा के केंद्र में रहें। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, तूफान, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से वानर सेना आदि। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
This pop rock singer came from Miami, Florida, with a mellifluous voice and a good songwriter. Happy birthday, Deborah Harry, or simply Debbie. She had long black hair, but she decided to cut it short and color it blonde. So her music group was decided to name her band Blondie. A major success, enjoyed a string of albums drenched in electronic pop with shades of disco. Here's to Blondie.
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
Stay tuned for coming up now with Samachar Prabhat, Hindi News Bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a good day.
Namaskar.